इप्सिता ने अपनी सहेली नंदिनी को अपनी सगाई के लिए आमंत्रित करने हेतु फोन किया। जैसे ही उसने दो दिन बाद होने वाली सगाई की खबर दी, नंदिनी अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गई। नंदिनी ने हैरानी से कहा, लेकिन इतनी जल्दी? मैंने सोचा था तेरी सगाई और शादी से पहले मैं अच्छे से खरीदारी करूंगी और सारी तैयारी कर लूंगी। मैचिंग इयररिंग्स, ज्वेलरी, हील्स, सब कुछ खरीद लूंगी और तब आऊंगी, पर तूने तो मुझे बोतल से निकला हुआ जिन समझ लिया है। इप्सिता ने थोड़ी खींचते हुए कहा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी 2-3 घंटे की ही तो फ्लाइट है मुंबई से जयपुर की। फटाफट फ्लाइट बुक करो और कल तक यहाँ आ जाओ, मम्मी पापा पहले ही सारी तैयारी में लग गए हैं। नंदिनी उत्साह से बोली, यार मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, लगता है हमारे प्यारे जीजाजी को तो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए हो, इसीलिए इतनी जल्दी सगाई कर रहे हैं। इप्सिता ने मन ही मन कहा, वो तो सब अपनी मासा की मर्जी से कर रहे हैं। इप्सिता को चुप देखकर नंदिनी ने कहा, हेलो, तुम सुन रही हो ना मेरी बात, या जीजाजी के ख्यालों में खो गई हो? इप्सिता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कुछ भी मत बोला करो नंदिनी, और तुम ये बताओ हमारी सगाई तक यहाँ पहुँच पाओगी या नहीं? नंदिनी ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, मैं अभी सारी फ्लाइट की उपलब्धता और समय जांचती हूँ और तुरंत पैकिंग करना शुरू करती हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जरूर आऊंगी, आखिर मेरी प्रिंसेस बेस्ट फ्रेंड की सगाई है। इप्सिता ने गंभीर होते हुए कहा, तुम यहाँ पहुँचकर हमें कॉल कर देना, हम तुम्हें एयरपोर्ट से पिकअप करवा लेंगे। नंदिनी ने खुशी से कहा, ओके डन। इप्सिता के दिमाग में कई बातें चल रही थीं। उसने मन ही मन कहा, मिस्टर अभिमन्यु ने तो बोला था कि वो ये शादी सिर्फ अपनी मासा के कहने की वजह से कर रहे हैं, नहीं तो वो हमसे या किसी से भी शादी नहीं करते। आखिर क्यों बोला था उन्होंने ऐसा? और संजय अंकल भी पता नहीं उनके बारे में सब पता कर पाई या नहीं। इप्सिता अपने कमरे से बाहर निकली। उसने देखा उसके माँ बाप जा चुके थे और शगुन का सारा सामान हटवा दिया गया था, लेकिन इप्सिता का सगाई का जोड़ा अभी भी उस चांदी की थाली में उसी टेबल पर रखा था। इप्सिता नीचे उतरकर हॉल में आई और वहाँ सोफे पर बैठकर सामने रखे उस पर्पल रंग के खूबसूरत लहंगे की ओर देखा। इप्सिता हाथ बढ़ाकर लहंगा छूने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज़ आई, बेबी जी। इप्सिता ने आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखा, संजय मुख्य द्वार से अंदर आ रहा था। इप्सिता उठकर खड़ी हो गई। संजय उसके सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोले, बेबी जी, आपने मुझे कुंवर सा की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था ना, मैंने उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। इप्सिता ने कहा, क्या पता चला आपको? संजय ने अपने हाथ में पकड़े हुए आईपैड को इप्सिता के हाथ में देते हुए कहा, ये रही उनकी कुछ जानकारी जितना हमें पता चल पाया। इप्सिता ने आईपैड पर दिख रही अभिमन्यु की बड़ी सी तस्वीर देखी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लैक कलर की टर्टलनेक टी शर्ट और उस पर स्काई ब्लू कलर का ब्लेजर पहना हुआ था, जो उस पर बहुत जच रहा था। इप्सिता ने उसकी तस्वीरें स्क्रॉल की और सामने लिखी जानकारी पढ़ने लगी। तभी संजय ने कहा, बीबी जी, कुंवरसा मासा के इकलौते बेटे और राजवंश परिवार के इकलौते वारिस हैं। कुंवरसा की एक छोटी बहन है जिनका नाम अर्पिता राणावत है, और उनकी शादी राणावत परिवार के बड़े बेटे जयराज राणावत से हुई है, और बाकी सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। इप्सिता ने वो सारी जानकारी पढ़ी और संजय की ओर देखते हुए कहा, इसके अलावा आपको और कुछ पता नहीं चला क्या? संजय ने सिर झुकाते हुए कहा, बेबी जी, लगभग एक साल पहले कुंवरसा की एक गर्लफ्रेंड थी जिसने कुंवरसा को किसी दूसरे लड़के की वजह से छोड़ दिया था, जिसके बाद कुंवरसा का प्यार पर से भरोसा उठ गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी किसी को डेट नहीं किया। ये सुनकर इप्सिता ने मन ही मन कहा, अच्छा, तो इसका मतलब यही वजह थी कि मिस्टर अभिमन्यु को मुझसे शादी करने में कोई रुचि नहीं थी। इप्सिता को इस तरह सोचते देख संजय ने पूछा, बेबी जी, आपको कुछ और काम था क्या मुझे? इप्सिता ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, थैंक यू सो मच संजय अंकल, और प्लीज़ ये बात आप किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये सारी जानकारी निकलवाई है। संजय ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप बाहर चला गया। इप्सिता ने अपने हाथ में पकड़े आईपैड में अभिमन्यु की तस्वीर देखनी शुरू कर दी। इप्सिता सोफे पर बैठे हुए बोली, अभिमन्यु जैसे इतने हैंडसम, अमीर और राजघराने के लड़के को भी कोई लड़की छोड़ सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? इप्सिता ये सोच ही रही थी कि उसने अभिमन्यु की उस तस्वीर को स्क्रॉल किया और नेट पर और भी तस्वीरें सर्च करने लगी। उसे अभिमन्यु की एक भी मुस्कुराती हुई तस्वीर नहीं मिली। इप्सिता ने कहा, शायद मिस्टर अभिमन्यु का प्यार पर से भरोसा उठ चुका है, इसीलिए वो हर किसी से इतना रूखा व्यवहार करते हैं। इप्सिता को अभिमन्यु के लिए कुछ बुरा लग रहा था। इप्सिता हॉल में बैठी ही थी कि उसने देखा कई लोग हवेली के अंदर आए, साथ में उनके हवेली के मैनेजर भी थे। इप्सिता उठकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने सबको निर्देश देते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ आज का ही समय है, हमें जल्दी से जल्दी पूरी हवेली को सजाना होगा। पूरी सजावट सिर्फ ताज़ा गुलाब के फूलों से होगी, और साथ ही लाइटिंग का भी हमें अच्छा ध्यान रखना होगा। सुहासिनी मैम ने बताया है कि स्टेज पर हमें गोल्डन और डार्क ब्लू शेड में सजावट करनी है। फटाफट सब लोग अपने काम में लग जाओ। सभी लोग सगाई की तैयारी में लग गए। इप्सिता को ये सब देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। सगाई की तैयारी सूर्यवंशी हवेली में जोरों शोरों से चल रही थी। सुहासिनी जी खरीदारी करके वापस आ चुकी थी। उनके पीछे चल रहे मैनेजर ने कहा, मैम, सजावट लगभग पूरी हो गई है, एक बार आप चेक कर लीजिए, और खाने की सारी तैयारियां हो गई हैं। सुहासिनी जी ने कहा, हमें और भी बहुत सारे काम हैं, ये सारी चीजें आप खुद ही चेक कर लीजिए और अगर कोई परेशानी हो तो हमें बता दीजिएगा। इतना कहकर सुहासिनी जी अपने कमरे में चली गईं। पूरा दिन सजावट में लग गया। वहीं राजवंश महल में नरेंद्र और पल्लवी को जैसे ही पता चला कि रानी सा ने अभिमन्यु की सगाई का शगुन भेज दिया है और दो दिनों के अंदर सगाई है, वे दोनों निराश हो गए। पल्लवी ने नरेंद्र पर गुस्सा करते हुए कहा, देख लिया ना आपने, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि मोहिनी भाभी के दिमाग में अलग ही खुराफात चल रही है। वो अभिमन्यु के 26वें जन्मदिन से पहले देखिएगा, उसकी शादी करवा कर ही मानेगी और हम यूं ही हाथ मलते रह जाएंगे। नरेंद्र ने गुस्से से अपना हाथ मेज पर पटकते हुए कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पल्लवी ने ये सुनते ही हंसते हुए कहा, अच्छा तो क्या कर लेंगे आप, भाभी के सामने तो आपसे कुछ बोला नहीं जाता और अभिमन्यु के आगे आपकी कुछ चलती नहीं है। जितनी जल्दी भाभी सगाई कर रही है, देखिएगा उससे भी जल्दी वो अभिमन्यु की शादी कर देगी और हमें इसी तरह बेमन से अभिमन्यु की शादी में शामिल भी होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो और कोई विकल्प ही नहीं है। नरेंद्र ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ सोचता हूँ। पल्लवी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इतने दिन से तो सुन रही हूँ मैं कि आप कुछ करेंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आपसे कुछ होगा। नरेंद्र गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझे चुनौती दे रही हो? पल्लवी ने उन्हें उकसाते हुए कहा, जी नहीं बिल्कुल नहीं, हम आपको सच बता रहे हैं। नरेंद्र और पल्लवी बात ही कर रहे थे कि कमरे पर किसी ने खटखटाया, दोनों चुप हो गए। पल्लवी ने तेज आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। महल का एक नौकर अंदर आया और सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, रानी सा ने डिनर के लिए आप दोनों को बुलाया है। पल्लवी ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, इतनी जल्दी डिनर? नरेंद्र ने कंधे उचका दिए। पल्लवी ने नौकर से कहा, ठीक है तुम चलो, हम दो मिनट में आते हैं। वो नौकर चला गया। पल्लवी ने कहा, क्यों बुलाया होगा भाभी सा ने हमें? नरेंद्र ने कहा, वो तो अब हमें वहां चलकर ही पता चलेगा, चलो। वहीं दूसरी ओर
इप्सिता डिनर के बाद अपने कमरे में बैठी थी कि नंदिनी का मैसेज आया, ईशु तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे फ्लाइट मिल गई है, मैं कल सुबह 9 से 10 बजे तक उदयपुर पहुंच जाऊंगी। इप्सिता थोड़ी खुश हुई और चुपचाप अपने बिस्तर पर कई मैगजीन लेकर बैठ गई। उन्हें पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह इप्सिता की आंखें नंदिनी के फोन कॉल से खुली, ईशु मेरा प्लेन 30 मिनट में लैंड होने वाला है। इप्सिता हड़बड़ाकर उठी और बोली, ठीक है हम अभी संजय अंकल को तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट भेज देते हैं। एक घंटे बाद इप्सिता तैयार होकर नंदिनी को कॉल करने लगी, लेकिन नंदिनी ने कॉल रिसीव नहीं किया। इप्सिता ने अपने मोबाइल की ओर देखते हुए कहा, पता नहीं नंदिनी को संजय अंकल मिले होंगे या नहीं, और ये लड़की मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। नंदिनी का कॉल न लगने से इप्सिता थोड़ी परेशान हो गई। क्रमशः क्या नंदिनी समय पर आएगी उसकी सगाई के लिए, और जो कुछ भी इप्सिता को अभिमन्यु के जीवन के बारे में पता चला है क्या वो सब सच है? क्या वो अभिमन्यु से इस बारे में कुछ पूछेगी? उनकी सगाई में अभिमन्यु के चाचा चाची क्या प्लान कर रहे हैं? क्या अभिमन्यु और उसकी माँ को इस बारे में कोई भनक है? सब कुछ पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बस आप लोग पढ़कर कमेंट करती रहिए।